दिन भर 15 मई मंगलवार सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। बनारस में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने से कई लोगों के हताहत होने की आशंका। कर्नाटक में किसी दल को नहीं मिला बहुमत, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस ने जनता दल सेक्युलर से मिलाया हाथ।
एक पार्टी आया तो अच्छा रहता था, ये इम्प्रूवमेंट होता था कर्नाटक स्टेट, बट अभी देखा तो नहीं होता है।
सिद्धारमैया और कुमार स्वामी दोनों ने सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। कर्नाटक में सत्ता की चाबी फिलहाल राज्यपाल के पास।
मोदी जी जब देश के प्राइम मिनिस्टर बने, जब ये तय हुआ था कि 75 इयर्स की एज वालों को सक्रिय राजनीति में नहीं रहना है, तब उन्होंने वजूभाई वाला को कर्नाटक का गवर्नर बनाया था।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट इलाके में आज निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिर गया। पुलिस के अनुसार इसमें कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रशासन से बचाव कार्य में तेजी लाने को कहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आज आए 224 में से 222 सीटों के परिणामों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब तक बीजेपी ने 90 से अधिक और कांग्रेस ने 70 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि तीसरा बड़ा दल जनता दल सेक्युलर है। हालांकि अभी तक पूर्ण बहुमत किसी भी दल को मिलता नहीं दिख रहा है। पश्चिमी अफगानिस्तान में फराह की प्रांतीय राजधानी में तालिबान ने हमला किया है। रिपोर्टों का कहना है कि कई इलाकों में चरमपंथी समूह के हमले के बाद वहां के निवासी भागने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई अभी जारी है और चश्मदीदों का कहना है कि तालिबान ने अफगान खुफिया सेवा के प्रांतीय कार्यालय को कब्जे में ले लिया है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि पुलिस प्रमुख मारे जा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि वे हमले का जवाब दे रहे हैं और तालिबान की स्थिति पर हमले के लिए विमान का प्रयोग कर रहे हैं। स्थानीय गवर्नर का कहना है कि चरमपंथियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एक घटना को देखने वाले एक चश्मदीद ने बताया। जंजीर चेक पोस्ट के आगे ये टैंक केंद्रीय फराह प्रांत में है। मुजाहिदीन द्वारा फायर किए गए रॉकेट लॉन्चर ने इस टैंक को निशाना बनाया और अब ये जल रहा है। यहाँ पर लाश पड़ी है। ये थे एक चश्मदीद के शब्द। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा है कि वो परमाणु संधि को नुकसान से बचाने और सही रास्ते पर रखने के लिए यूरोपीय देशों से बातचीत कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति के प्रमुख फेडरिका मोगेरिनी से मुलाकात के बाद जरीफ ने कहा कि यूरोपीय हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ समझौते पर बातचीत अगले 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु समझौते से हटने के फैसले के खिलाफ समर्थन के लिए जरीफ इस समय विश्व का दौरा कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल के खिलाफ कल फलस्तीनियों के भारी प्रदर्शन के बाद आज गजा में छोटे प्रदर्शन हुए। कल हुए प्रदर्शन में इसराइली गोलीबारी में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। आज सुबह को कई लोगों ने मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में भाग लिया। ऐसी रिपोर्टें हैं कि मिस्र इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थता कर रहा है। गजा पर इस समय हमास का नियंत्रण है। हालांकि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के समर्थन में कई झड़पें भी हुई हैं। इतने लोगों के मारे जाने पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने स्वतंत्र जांच की मांग की है। इसके प्रवक्ता रूपर्ट कॉलविल ने कहा,
There are clearly tens of thousands of people who are unarmed, who are protesting very loudly.
ये साफ है कि 10,000 लोग बिना हथियार के थे और वो अपना विरोध जता रहे थे। उनमें कुछ चरमपंथी भी थे, लेकिन ये एक अलग विषय है। पत्थर फेंकने पर बाढ़ के करीब आकर गोली मारने को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये थे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता रूपर्ट कॉलविल के शब्द। वहीं प्रदर्शन के दौरान इसराइली सेना द्वारा फलस्तीनियों के मारे जाने के विरोध में तुर्की ने अंकारा में इसराइली राजदूत को देश छोड़ने को कहा है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राजदूत को कुछ समय के लिए इसराइल वापस चले जाने के लिए कहा गया है। गजा में हिंसा और अमरीकी दूतावास को यरूशलम भेजने की तुर्की आलोचना करता रहा है। नाइजीरिया में परिवहन अधिकारियों ने बताया है कि उत्तर पश्चिमी राज्य कडूना में 80 से अधिक लोगों को अगवा किया गया है। बंदूकधारियों ने कई गाड़ियों को सड़कों पर रोक लिया और उसमें बैठे लोगों को झाड़ियों में फेंक दिया। ऐसी रिपोर्टें हैं कि रिहा करने के बदले फिरौती मांगी गई है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर संदीप सोनी के साथ। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में 12 मई को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। आज मतगणना हुई, नतीजे अभी तक के इस प्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी 100 से 2 सीटें कम है जीत चुकी है। कांग्रेस 80 से 4 कम 76 सीटों पर है इस समय। जनता दल सेक्युलर 40 से कम 37 सीटें जीत चुकी है। आज दिन भर में हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शोमा चौधरी। विश्लेषण बाद में, खबर पहले और खबर भी पहले बनारस से, जहां पर आज एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिर गया है जिसकी वजह से कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। कार्यक्रम में सीधे उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र को शामिल कर रहे हैं। समीर, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी संदीप, मैं सुन रहा हूँ।
कैसे हुआ समीर ये हादसा, क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक आधिकारिक तौर पर?
देखिए, आज शाम की बात है, अब से कुछ देर पहले की ही, और ये एक निर्माणाधीन पुल है जैसे आपने बताया, ओवर ब्रिज बन रहा था कैंट से लहरतारा के रास्ते को जोड़ने के लिए, ताकि वहाँ जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ का इलाका है, और ये लगभग बताया जा रहा है बन करके तैयार ही होने वाला था कुछ दिन में, यानी इस पूरा तैयार हो चुका था। अचानक इसका एक हिस्सा, एक पिलर के पास एक हिस्सा इसका गिर गया, और उस समय वहाँ कई गाड़ियां वहाँ से गुजर रही थी। बड़ा भीड़ भाड़ का इलाका है, हमेशा ही गुजरती रहती है।
समीर, जो तस्वीरें हमने देखी हैं वो ये इस तरह की हैं कि फ्लाईओवर गिरा है, कई गाड़ियां इस तरह से दब गई हैं जैसे बिल्कुल उन्हें एकदम से दबा दिया गया हो, पापड़ बना दिया गया हो बिल्कुल। कुछ बताया गया अधिकारियों की तरफ से कि हताहतों की संख्या का शुरुआती अंदाजा कुछ पता चल पाया?
अब इस बात के लिए कोई भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि इसमें कितने लोगों के मरने की खबर है, घायल होने की खबर है, लेकिन चूंकि कई गाड़ियां, एक मिनी बस दबी हुई है, 5-6 कारें बताई जा रही हैं, कई ऑटो वहां पे दबे हुए हैं, तो उसके अंदर दबे तो कई लोग हैं, दर्जनों लोग दबे हुए हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है कि कितने लोग मरे हैं, घायल हुए हैं, क्या हुआ है। लेकिन जो वहां से लोग मौजूद हैं, प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, उनमें से बहुत से लोगों का ये कहना है कि मरने वालों की संख्या लगभग 10-12 लोगों के मरने की खबरें वहां के जो सुनने में आ रही हैं, बताई जा रही हैं, वो ये है। अभी आधिकारिक पुष्टि उसकी नहीं है, लेकिन एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां राहत कार्य के लिए रवाना हो चुकी हैं। एक टीम वहां पे पहले से ही मौजूद है जो इस समय राहत का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से तुरंत वहां पर जाकर के राहत और बचाव कार्यों को देखने की बात कही है। आसपास के लोग भी वहां पे राहत कार्यों में अपना सहयोग दे रहे हैं प्रशासन के साथ। अभी जो हमारी जानकारी है, सारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं बनारस के, उनको अलर्ट पे रखा गया है, सरकारी अस्पतालों के अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, कि जो भी घायल जाए उनको तत्काल वहां पे इलाज मिल सके और उनको सुविधाएं मिल सके, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो भी रिलीफ है। अभी यही जानकारी है इस पर कुल मिलाकर के।
बहुत शुक्रिया समीरात्मज मिश्र। खबर थी वाराणसी में एक निर्माणाधीन पुल गिरा जिसकी वजह से कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। लौट रहे हैं आज की बड़ी खबर पर। कर्नाटक में विधानसभा की कुल 222 सीटों पर मतदान हुआ था। बहुमत के लिए जरूरी सीटों की संख्या 112। आज हुई मतगणना के मुताबिक 112 सीटें किसी एक पार्टी को नहीं मिली। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी जरूर, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने जनता दल सेक्युलर के साथ हाथ मिलाया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद बोले, मुख्यमंत्री पद के लिए जनता दल सेक्युलर जिसे चुनेगी कांग्रेस उसे समर्थन देगी। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही सरकार बनाने के लिए रसाकुशी शुरू हो गई है। स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी भले ही सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही, मगर कांग्रेस की चाल ने उसे सख्ते में डाल दिया है। सिद्धरामैया के निवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और अशोक गहलोत की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉ. परमेश्वरा और कांग्रेस सचिव वेणुगोपाल भी मौजूद थे। उस बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जेडीएस को समर्थन करेगी। जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवेगौड़ा जी और एचडी कुमार स्वामी जी से हमारी बात हुई है और वो हमारे प्रस्ताव से सहमत हैं। वो सरकार बनाने के लिए हमारा समर्थन लेने के लिए तैयार हैं। हमारी उम्मीद है कि हम सरकार बनाने के प्रस्ताव के साथ आज शाम को राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। ये थे गुलाम नबी आज़ाद के शब्द। जब गुलाम नबी आज़ाद ने जेडीएस को प्रस्ताव भेजा, उस समय रुझान ऐसे थी कि बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पा रही थी। उसकी सीटों की संख्या 110 तक पहुंचकर गिरना शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ जनता दल सेकुलर के सीटें भी 40 से बढ़ती नहीं दिखी। हालांकि इस दौरान कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़ी, मगर 80 से आगे नहीं हो पाई। कांग्रेस और जेडीएस दोनों को ये स्पष्ट हो गया है कि उन्हें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, खासकर जनता दल सेकुलर को जो 10 साल से सत्ता में नहीं है। जाहिर है बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस के साथ आने के कारण कर्नाटक की सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसलती हुई दिख रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येडियुरप्पा ने कुछ इस तरह से नाराजगी जाहिर की।
2018 विधानसभा इलेक्शन पीपल ऑफ कर्नाटक रिजेक्टेड द
राज्य की जनता ने सिद्धरामैया की सरकार को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस इतनी बुरी तरह हारी है कि सिद्धरामैया खुद चामुंडेश्वरी से हार गए। मतदाताओं ने बीजेपी को सबसे बड़ा दल बनाया है, इसके बावजूद कांग्रेस पीछे के दरवाजे से आकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। ये थे बीएस येडियुरप्पा के शब्द। बीजेपी के सूत्रों से जानकारी मिली है कि धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा जैसे नेता जेडीएस के कुमार स्वामी से बात करने के लिए आज रात कर्नाटक पहुंच रहे हैं। शायद इसी तरह के दबाव से बचने के लिए कुमार स्वामी ने राज्यपाल वजूभाई वाला को एक पत्र भी सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन होने का दावा किया है। मगर बीएस येडियुरप्पा ने भी राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या जोड़ तोड़ होती है और बीजेपी इन हालात को अपने पक्ष में बदल पाती है या नहीं। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
स्टूडियो में मौजूद हैं जुबैर अहमद, बीबीसी संवाददाता बेंगलुरु से, नितिन श्रीवास्तव कार्यक्रम में शामिल होंगे, और स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शोमा चौधरी भी। शोमा, कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी आगे निकल गई?
ये तो एक तो सब एग्जिट पोल्स और जो भी कमेंट्री इतने महीनों से चल रही है वो गलत निकला है, और मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि लोगों अभी तक कांग्रेस में विश्वास नहीं रख पा रहे हैं कि अगर बीजेपी से तंग भी हैं पर ये वोट एक विश्वास वोट नहीं बन पा रहा है कांग्रेस के लिए। और मुझे लगता है कि इसकी सबसे जो फंडामेंटल बुनियादी बात है कि कांग्रेस अभी तक कोई एक क्लियर वॉइस से बात नहीं कर रहा है कि व्हाट डू दे स्टैंड फॉर। तो वो बहुत ऑपर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसका कोई क्लियर एक विजन नहीं है, और इसके वजह से अगर आप जिसको भी देखें, अगर दलित्स को देखें या मुस्लिम्स को देखें या लिंगायत्स को देखें या जो भी उनकी जो सोचे थे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, वो एक क्लियर डिसीशन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप जेडीएस का भी देखें तो उनका इतना विजन नहीं है कि वो एक प्री पोल अलायंस बनाना पाए। तो और उनकी जो कैंपेन भी रहा है, इट हैज़ नॉट बीन अ फोर्सफुल कैंपेन कि उनका गवर्नमेंट क्या कर पाया है और क्या आगे बढ़ के क्या करेंगे। दे गॉट ट्रैप्ड इन द, इतना मैं कह सकती हूँ कि राहुल गांधी ने एक पॉजिटिव कैंपेन चलाया, जितना तर हमारा पीएम मोदी ने एक बहुत नेगेटिव कैंपेन चलाया था, इट बिकेम वेरी कॉम्युनल बाय द एंड ऑफ इट, पर उसका एक जो तगड़ा मुकाबला करना था कांग्रेस को वो नहीं कर पाए, एंड आई स्टिल फील कि लोग उन पे विश्वास नहीं रख पा रहे हैं। तो इसकी एक नतीजा है,
ये इसका एक नतीजा हो सकता है। बेंगलुरु से बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। नितिन, पहले तो आप कर्नाटक से आम लोगों की आवाज़ें हमें सुनवाई, ये चुनाव के नतीजे आने के बाद और कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के हाथ मिलाने के बाद और उसके बाद सत्ता बनाने के लिए जो जोड़ तोड़ दावे प्रतिदावे हो रहे हैं, उस पर कर्नाटक के लोग क्या कह रहे हैं?
संदीप, बड़ी मिली जुली राय है लोगों की यहाँ पर, और ज्यादातर लोगों को ऐसी उम्मीद थी, ऐसा लगता है, ये भी एक खास बात है, जो एक मिली जुली सरकार के पहले एक कंफ्यूजन का दौर था और वो लोगों की बातों में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि शायद चीजें दूसरी होती तो बेहतर होती। आइए सुनते हैं कुछ आवाजें।
जो है सही है, जो आइंदा चल के अच्छा होएगा, हमें ऊपर वाले से भरोसा है कि अच्छा होएगा।
स्टेट के लिए या किसी पार्टी के लिए?
स्टेट के बात कर रहा हूँ, तो स्टेट का आइंदा चल के बहुत सारे लोग को काम धंधा रोजी सब मिलेगा और सब अच्छी चीजें होगी और बदलाव आएगा।
अच्छा, बदलाव की है, तो मतलब ये जो कंफ्यूजन है, लेकिन अभी तो किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं आया है।
आ जाएगा, हमें यकीन है आने के बाद जैसा आगे चलता था इस जनरेशन में और थोड़ा आगे बढ़ेगा।
आगे बढ़ेगा आपको लगता है? आप बताइए क्या लगता है कि अभी तक
एक ही पार्टी, एक पार्टी आया तो अच्छा रहता था, ये इम्प्रूवमेंट होता था कर्नाटक स्टेट, बट अभी देखा तो नहीं होता है वही।
तो अभी क्या है कि किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, अभी लोग कह रहे हैं कि अलायंस होगा, को कह रहे हैं कि सीट नहीं है पूरी, तो बड़ा कंफ्यूजन सा होगा। लोग कब तक लगता है गवर्नमेंट बनेगी, क्या होगा?
और लगेगा गवर्नमेंट करने के लिए, बीजेपी वाला भी गया है गवर्नमेंट फॉर्म करता कर को, अभी उन लोग जेडीएस भी गया है, क्या होता है पता नहीं है। आज और कल तक रिजल्ट हो जाएगा,
आज और कल तक थोड़ा स्थिति साफ होगी। क्या लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा होगा या लोगों को लग रहा था कोई एक जीतेगा?
नहीं, ऐसे ही होगा सर, जीतने के लिए क्या चांस नहीं है ना अभी। अभी उन लोग बीजेपी को ऑपरेशन कम बीजेपी करना पड़ेगा ना, वही क्या तो एक पार्टी आ जाएगा, नहीं तो नहीं है, यही है फाइनल है।
तो इस तरह की कुछ आवाजें थी संदीप यहाँ पर आम लोगों से जो हमने बेंगलुरु में बात की। अब हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं वरिष्ठ पत्रकार त्यागराज शर्मा साहब को बेंगलुरु से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सर। ये बताएं कि जो लोग आवाजें ये लोग कह रहे थे कि कंफ्यूजन है, ऐसा होता तो क्या होता, क्या आपको लगता है, क्या ग्राउंड पर क्या रियलिटी आप क्या देखते रहे?
देखिए, एक तो सबसे मुख्य मुद्दा ये था कि पहली बार एक बीजेपी मिलजुल के येदियुरप्पा वापिस आए थे बीजेपी में 213 के बाद, और श्री रामुलु भी बीजेपी में वापस आए थे। इस बार एकजुट होके बीजेपी ने कांग्रेस से मुकाबला किया। उम्मीद ये थी कि शायद इस बार वो सरकार बना पाएंगे, हालांकि दोनों की तरफ से दावे ज्यादा हो रहे थे कि 100 बीजेपी बोल रहा था 150 सीटें लेंगे और कांग्रेस बोल रहा था हम फिर से पावर में आएंगे। पर कांग्रेस की जो हार का मुख्य कारण मेरे अनुसार, इन्होंने जो लिंगायत में कम्युनिटी में डिवाइड करने की कोशिश की थी उसको भारी दाम चुकाना पड़ रहा है। और उसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी एक दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से कांग्रेस को मात खानी पड़ी है। ये अलग है कि अभी जेडीएस के साथ मिलके वो चाहते हैं कि दोबारा पावर में आए।
जी, एक छोटा सा सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। जो कैंपेन था भारतीय जनता पार्टी का, वो टुवर्ड्स द एंड एक सिलसिला सा बन गया है भारत में पिछले एक दो तीन सालों में, कि वो दो शख्सियतों पर आकर सेंट्रिक हो जाता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वही कर्नाटक में हुआ, हालांकि येदियुरप्पा को लाना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, पिछले साल अनाउंस कर दिया था। क्यों येदियुरप्पा को उन्होंने थोड़ा सा दरकिनार किया पब्लिकली साथ में उनके दिखने से?
आप अगर नतीजे देखेंगे तो उससे लगता है कि दरकिनार नहीं किया, क्योंकि जो ऐसा होता तो मेरे हिसाब से जो लिंगायत कम्युनिटी है जो येदियुरप्पा के काफी सपोर्ट करती थी
जी,
वो ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे आप नतीजे से देख रहे हैं कि लिंगायत डोमिनेटेड एरियाज में बीजेपी को काफी सफलता मिली है, राइट? अच्छा, उसके अलावा मोदी और अमित शाह का यहाँ आना काफी जरूरी हो गया था, क्योंकि मेरा अपना जो अनुमान है, जो आरएसएस का जो इंटरनल सर्वे था उसके अनुसार बीजेपी को 75 से ज्यादा सीट नहीं मिल रही थी, तो इसी कारण मेरे को लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो पहले 7-8 रैलीज को संबोधन करना चाहते थे वो मिलके 21 हो गए, तो उनके यहाँ आने से बीजेपी को बहुत ही।
नितिन, मैं आपको रोक रहा हूँ, त्यागराज शर्मा साहब को लेकर हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहिए, उनके लिए मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। वो सवाल ये, जिस पर हम आपके पास वापस आएंगे, वो सवाल ये कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के पीछे आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कितनी बड़ी भूमिका थी, सवाल पर हम आएंगे आपके पास वापस। बने रहिए हमारे साथ। सोमा चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, दिल्ली स्टूडियो में। एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया, वो कहती हैं कि यदि कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने चुनाव से पहले हाथ मिला लिया होता तो चुनाव का नतीजा बदल सकता था। आपको लगता है ऐसा?
अगर आप सीट का नंबर्स देखें तो हाँ, बदल सकता था, पर यही बात है कि अब तक कांग्रेस ने ये एक चीज़ नहीं सीखा है बीजेपी से, जो एकदम इलेक्टोरल मैथ है कॉन्स्टिट्यूंसी को एकदम ब्रेक डाउन करके और बहुत महीनों पहले से, सालों पहले से इलेक्शन प्रिपरेशन के माने ज़मीन से जुड़ के एक कार्यक्रम शुरू करना, वो अभी तक कांग्रेस नहीं कर रहा है। गुजरात में भी वो लास्ट मिनट जाके अपना कैंपेन किया, कर्नाटका में भी ऐसे ही हुआ है। तो इसलिए अभी तक वो जो एक इलेक्शन का एक जंग के जैसे बीजेपी जो लड़ते हैं वो कांग्रेस अभी तक नहीं सीख पाया।
और उसमें आरएसएस की क्या भूमिका, जो सवाल अभी हमने किया था, इस पर हम लौटेंगे थोड़ी देर के बाद। कार्यक्रम में शामिल करेंगे जुबैर अहमद बीबीसी संवाददाता को, और पहले सुनेंगे कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की वो क्लिप जो उन्होंने अब से कुछ देर पहले दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कही है बात।
संविधान और कानून की प्रकाशता बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर पोस्ट पोल कोएलिशन में दो राजनीतिक दलों का गठबंधन पूर्ण बहुमत दर्शाता है तो गवर्नर के पास और कोई चॉइस नहीं बजाय उस कोएलिशन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के। मौजूदा कर्नाटक में स्थिति में कांग्रेस पार्टी, जेडीएस, बीएसपी का एक साथी और एक जो इंडिपेंडेंट साथी है उनकी संख्या मिलकर 117 है जबकि बहुमत की संख्या 112 है। हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन जी द्वारा एक क्लियर प्रेसिडेंट वाजपेयी जी को जब आमंत्रित किया गया, ले डाउन किया गया है, उसके बाद मार्च 2017 में और मार्च 2018 में गोवा, मणिपुर और मेघालय में जहां भाजपा की सरकारें बनी क्लियर प्रेसिडेंट ले डाउन किया गया है, साथ वो प्रेसिडेंट जो श्री अरुण जेटली द्वारा कोट किए गए हैं उनके लेख में, ऐसे में कोई और ऑप्शन नहीं बचती बजाय इसके कि जेडीएस और कांग्रेस की कोएलिशन सरकार को सरकार का गठन करने के लिए कर्नाटक में आमंत्रित किया जाए।
जुबैर साहब, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला दुहाई दे रहे हैं संविधान की और पहले क्या क्या हुआ। ये दुहाई देने की क्या जरूरत पड़ी और संविधान का हवाला देने की कांग्रेस को, इसकी क्या वजह है?
देखिए, इनका साफ ये स्ट्रेटजी इनकी है कि दबाव बना के रखें गवर्नर साहब के पास, क्योंकि ऐसा कहते हैं लोग कि गवर्नर भी उनके ही आदमी है। ऐसा आप जब कांग्रेस के ऑफिस में जाएंगे और पॉलिटिकल सर्कल्स में बात करेंगे तो यही बातें हो रही हैं। तो उनको इस बात का खदशा है कि गवर्नर साहब उनकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर सकते हैं, इसलिए वो दबा एग्जांपल्स दे रहे हैं। और गोवा का भी एग्जांपल है, उसकी भी मिसाल है, जहां पर कांग्रेस को बहुमत मिला था लेकिन सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। और आपको यहाँ पर संदीप, मैं बताना चाहूँगा, मैं कांग्रेस के सदर दफ्तर में था, हेडक्वार्टर्स में था, सुबह काफ़ी घंटे वहाँ बिताए मैंने। तो जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस के दफ्तर में थोड़ी मायूसी थी, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर बाहर से कुछ लोग आए, कांग्रेस के जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, और वो अपने इस दावे को वहाँ से शुरू किया इन लोगों ने कि भाई हम हारे नहीं हैं, हम जनता दल सेक्युलर के साथ मिल के सरकार बनाने का इरादा रखते हैं। और थोड़ी देर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जो बाद में सुरजेवाला ने की बहुत घंटों के बाद, और वहीं से ये एक तरह से माहौल बनने लगा था। और ये जो ट्विस्ट आया है वो इसलिए आया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो शुरू में बढ़त मिली थी उन्हें, वो थोड़ा सा कम उसमें कमी आई थी, जिसके बाद इनको एक प्रोत्साहन मिला और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और इस पे अभी इस तरह के दावे कर रहे हैं।
शुक्रिया जुबैर। कर्नाटक में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि राज्य में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसमें राज्यपाल की अहम भूमिका होगी। आज दिन भर से कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला का नाम सुर्खियों में चल रहा है। कर्नाटक के राज्यपाल के बारे में और जानकारी जानना जरूरी है। वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट अहमदाबाद से।
देखिए, वजूभाई रूडाभाई वाला जो है भारतीय जनता पार्टी में पहले जनसंघ में थे, और इन्होंने, इनकी संघ आयु जो है वो कम से कम 50 साल से ऊपर है। बचपन से ये संघ परिवार में थे, फिर जनसंघ में ये काफी सक्रिय थे। राजकोट शहर में इन्होंने संघ परिवार और जनसंघ में काफी काम किया और वो राजकोट सिटी के मेयर भी बने थे। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो चुनिंदा 4 से 5 लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में जो स्थापना की उसमें इनकी गणना होती है, और ये भारतीय जनता पार्टी के आज भी संकट मोचक माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन के आए थे तब उनके लिए कोई सीट खाली नहीं कर रहा था, क्योंकि गुजरात में तब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी खराब थी, और हरेन पंड्या जो थे उनकी सीट खाली करवाना मोदी चाहते थे, और हरेन पंड्या ने मोदी जी के लिए जब सीट खाली करने के लिए इनकार किया तो वजूभाई वाला ने राजकोट 2 नंबर की जो अपनी सीट थी वो खाली करके करके नरेंद्र मोदी जी को वहां से चुनाव लड़वाया था और 14,000 वोट से जिताया भी था। वजूभाई वाला जो है वो 2 टाइम गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रहे और वो भी इस समय के जब शंकर सिंह वाघेला ने भारतीय जनता पार्टी में बड़ा बवंडर मचाया था और उन्होंने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी, तब इनको पार्टी ने रिक्वेस्ट की थी, संघ परिवार ने रिक्वेस्ट की थी कि आप संकट मोचक की तरह अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़िए, रेवेन्यू मिनिस्ट्री छोड़िए और पार्टी के प्रेसिडेंट की कमान संभालिए। और इन्होंने एक ही मिनट में अपने पद से त्याग करके संघ परिवार के कहने पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रमुख का पद संभाला था। ऐसा उन्होंने 2 बार भारतीय जनता पार्टी की क्राइसिस के लिए किया। ये रेवेन्यू मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर रहे लंबे टर्म तक, 1998 से 2014 तक ये बीजेपी के सक्रिय राजनीति में रहे। 2012 तक इन्होंने, इनका रिकॉर्ड है कि 18 बार इन्होंने बजट जो है गुजरात के टाइम गुजरात के लिए पेश किया और नरेंद्र मोदी के काफी चहेते मिनिस्टर्स में से एक थे, एक टाइम में उनके राइट हैंड माने जाते थे। मोदी जी जब देश के प्राइम मिनिस्टर बने और जब ये तय हुआ था कि 75 ईयर्स की एज वालों को सक्रिय राजनीति में नहीं रहना है, तब उन्होंने वजूभाई वाला को कर्नाटक का गवर्नर बनाया था।
कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला के बारे में जानकारी दे रहे थे अहमदाबाद से वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट। और कार्यक्रम में एक बार फिर बेंगलुरु चल रहे हैं नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी संवाददाता। आपके साथ नितिन त्यागराज शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कम शब्दों में कि इस जीत में, कर्नाटक की इस जीत में, भारतीय जनता पार्टी की जीत में आरएसएस की कितनी भूमिका रही।
काफी हद तक, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आरएसएस के कम से कम 50,000 कार्यकर्ता 6 महीने पहले ही कर्नाटक में आ गए थे और अब खूब बीजेपी के लिए समर्थन के लिए कोशिश कर रहे थे। तो काफी आज जो बीजेपी की स्थिति है जिसमें इनको सिंपल मेजोरिटी छोड़ दीजिए 104 या 105 सीटें मिली हैं, वो काफी हद तक उसका श्रेय आरएसएस को दिया था।
संदीप जी बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव, और उनके साथ थे वरिष्ठ पत्रकार त्यागराज शर्मा, दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शोमा चौधरी। शोमा, ये बताइए कि कर्नाटक के चुनाव के नतीजे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर किस तरह असर डालेंगे, डाल सकते हैं कांग्रेस और राहुल गांधी को अभी अलग रखते हैं?
आप पूछिए कि अभी आगे वाले चुनाव में इसकी क्या, मुझे लगता है काफ़ी असर होगा क्योंकि बीजेपी का जो एक मजबूत इमेज बनता जा रहा है कि वो जीत के बाद जीत उनको जो हासिल हो रहा है, इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। और मैं जो पहले भी कह चुकी हूँ कि इनकी इलेक्शन मशीनरी का मुकाबला करना, बाकी पार्टियों को बहुत गौर से देखना है कि इनकी इलेक्शन मशीनरी क्या है। और इनकी जो अभी इन्होंने बताया कि आरएसएस की कार्यकर्ता जमीन से जोड़ के जो काम कर रहे हैं, ये सब का नतीजा। और हमें ये भी याद रखना है कि जो हम अभी कर्नाटका में एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, अब तक जो भी बीजेपी स्टेट्स में हम देखा है वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं हो रहा है, ये 3-3 बार जीत चुके हैं।
शोमा, मैं यहाँ पे टोक रहा हूँ आपको, कांग्रेस को सीटें कम मिलना कर्नाटक में बीजेपी के मुकाबले राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा झटका है?
बहुत बड़ा झटका है क्योंकि जब से उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है उनकी इमेज बदल चुका है। थोड़ा सा जो पहले उनको पप्पू वगैरह बुलाया जाता था उससे थोड़ा उनको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है आजकल पॉलिटिकली, पर उनका अभी तक एक भी विक्ट्री नहीं है। और मैं वही फिर से बात ठहरानी चाहूँगी कि बाकी बीजेपी रूल स्टेट्स में वो बार बार जीत के आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर्नाटका में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उसमें ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते हैं। क्यों आपका एंटी इनकम्बेंसी है? क्योंकि बाकी बीजेपी स्टेट्स में एंटी इनकम्बेंसी वो लड़ पा रहे हैं, तो ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा धक्का है मेरे हिसाब से। अब राजस्थान में बचती है जहाँ पे कांग्रेस का थोड़ा शायद मजबूत स्थिति है, पर इफ दे लूज दैट इज वेल तो इट विल बी वेरी वेरी
राजस्थान में होना है, मध्य प्रदेश में चुनाव होना
और
है, छत्तीसगढ़ में
चुनाव हो रहा है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी पे बहुत प्रश्न उठनी चाहिए कि उनकी लीडरशिप में ये बार बार इलेक्शन हारना, दिस इज़ समथिंग विच द पार्टी मस्ट क्वेश्चन हिम। और अगर उनको ऐसे इनर पार्टी डेमोक्रेसी बनाना है तो आई थिंक देर मस्ट बी अ लॉट मोर चैलेंज ऑफ राहुल देन देयर करंटली इज।
बहुत शुक्रिया शोमा चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद थी। और इसी के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे, चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आ जाए 224 में से 222 सीटों के परिणामों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब तक बीजेपी ने 90 से अधिक और कांग्रेस ने 70 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट इलाके में आज निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिर गया। पुलिस के अनुसार इसमें कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया गुरप्रीत कौर ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत, भारतीय समय अनुसार, समय जानते हैं आप, सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। bbchindi.com आपके साथ है। शुभ रात्रि।